ओम शांति। वैसे संसार में गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है, बहुत धूमधाम से, बहुत प्यार से, खुशी से लोग मना रहे हैं। ये 10 दिवसीय त्योहार जो लोग मनाते हैं, अनेक मनोकामनाएं रखते हुए बहुत ही प्यार से ये त्योहार मनाते हैं। ना केवल घर घर में गणपति की प्रतिष्ठापना करते हैं, लेकिन गली गली में भी, भारत में तो गली गली में भी गणपति की प्रतिष्ठापना करते, और फिर ना केवल भारत में लेकिन विदेशों में भी, जहाँ भी हिंदूज हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वहाँ बहुत प्यार से ये त्योहार मनाते हैं। कोई एक दिन के लिए मनाते हैं, कोई 3 दिन के लिए मनाते हैं, कोई 10 दिन के लिए मनाते हैं। तो बाबा ने इन सभी का राज पहले से हमें बताया हुआ है, हमें ये लक्ष्य दिया हुआ है कि हमें देवी देवता बनना है, और देवी देवताओं का गुण क्या है वो भी हमें बताया हुआ है। और सतयुग की देवी देवताएं कौन है? श्री कृष्ण, श्री नारायण, लक्ष्मी, ये सब, या फिर त्रेता युग के जो देवी देवता है वो है श्री सीता और श्री राम। तो सतयुग के जो देवी देवताएं वो तो होके गए है ना, वो तो इस संसार में आए, फिर अपना कर्म किया, फिर पुनर्जन्म लेते हुए हमारे में से ही यहाँ ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी देवी देवताएं हैं जो सतयुग में जन्म या त्रेता युग में जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनका गायन, पूजन, अर्चना बहुत प्यार से लोग करते आए हैं, और उनसे प्राप्तियां भी लोगों को हो रहा है। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं को पूजने से उनको प्राप्तियां नहीं हो रही है, कुछ तो हो रहा होगा, तो इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे होंगे ना। लेकिन बाबा ने हमें ये समझ दे दी है, जो भी वो प्राप्तियां हैं वो अल्पकाल की प्राप्ति है, क्षणभंगुर प्राप्तियां हैं। लेकिन हमें यहां संगम युग में अविनाशी प्राप्ति करने का लक्ष्य बाबा ने दिया हुआ है। तो फिर ये देवी देवताएं कौन हैं जो सतयुग और त्रेता युग में नहीं आए, ये कौन है फिर? जैसे श्री गणेश की जो त्योहार जो चल रहा है, या फिर उनको जो पूज रहे हैं, वो कौन है फिर? कौन है? हम सभी हैं, इशारा यहां से आ रहा है ना। संगम युग का ही गायन है ना। तो संगम युग में बाबा का हर बच्चा, शिव का हर पुत्र या पुत्री, वो गणेश कहलाते हैं, है ना? तो वो स्वमान हमें लेने की जरूरत है, ना केवल पूजना है लेकिन उन जैसे बनना है, है ना? शास्त्रों में जो भी लोगों ने लिखा, वो कुछ ना कुछ संसार को समझ देने के हिसाब से, कहानी के रूप में यह सब कुछ लिखा, समझ है ना। तो ऐसे ही गणपति के लिए भी बहुत सुंदर कहानी लिखा हुआ है, और गणपति के बहुत अलग अलग नाम हैं, सिद्धि विनायक भी कहते हैं, फिर विघ्नों को विनाश करने वाला विघ्न विनाशक कहते हैं। बहुत सारे ये जो अष्ट विनायक का नाम आप स्टेज पे देख रहे हैं, अलग अलग नाम से गणेश जी को पुकारते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उनसे वो प्राप्तियां होती है। विघ्नों को विनाश उन्होंने किया है, तो इसीलिए लोग भी विघ्नों को विनाश करने के लिए, अपने जीवन के विघ्नों को विनाश करने के लिए वो शक्ति प्राप्त करते हैं। सिद्धि विनायक भी कहते हैं, सिद्धियों को प्राप्त किए हुए। हम भी बाबा को याद करके, शिव के पुत्र बाबा को याद करके ऐसी सिद्धियां हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जो संकल्प किया वो सिद्ध हो गया। सिद्धि पुरुष मना कौन है, सिद्धि विनायक कौन है, सिद्धियां कौन सी हैं? सिद्धियां माना जो संकल्प किया वो हो गया, वो सिद्ध हो गया। सो इतनी शक्ति, इतनी ताकत अपने मन में, आत्मा में हम भर सकते हैं संगम युग में। तो उसी का गायन अलग अलग नामों से गणेश जी को पुकारते हैं। तो जन्म कहानी अगर देखें, गणेश जी की जन्म कहानी बहुत सुंदर, हमें सीख मिलता है। कहते हैं पार्वती जी अपने ही शरीर के मिट्टी से निकाल के, मिट्टी निकाल करके एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंका, फिर वो गणेश जी हो गए। तो ये सोचने की बात है, तो क्या मनुष्य के तन में ही इतना मिट्टी नहीं होता? जितना भी आप खुरोई दे, कितना भी आप निकाले, इतना मिट्टी नहीं निकलता। तो देवी देवताओं के शरीर से निकल सकता है क्या इतनी मिट्टी? मनुष्य के तन से ही इतना मिट्टी नहीं निकलता, तो देवी देवताओं के तन तो वो खुशबूदार है, बहुत शुद्ध है, तो उनके शरीर में तो मिट्टी होगा ही नहीं, गंदगी होगी ही नहीं, फिर भी ये क्यों कहा? क्योंकि शरीर मिट्टी का है ना, तो मिट्टी का पुतला वो दिखाया है, ये एक मिट्टी का शरीर है, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तो जब पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा गणेश जी को कि आप पहरे पे खड़े हो जाइए, दरवाजे पर खड़े हो जाइए, ताकि कोई अंदर ना आए। उसी समय 12 साल की तपस्या के बाद शंकर जी लौटे, और उनको पता ही नहीं है कि गणेश मेरा पुत्र है, वो पता नहीं है उनको। तो वो अंदर आने के लिए जब आए, तो गणेश जी तो रोका और बहुत गुस्सा आया शंकर जी को, कहते हैं गुस्से में उनका सिर काट दिया, है ना। तो यहां भी सोचने की बात है, 5 मिनट अगर हम तपस्या करते हैं, 10 मिनट हम योग करते हैं, हम इतनी शांति की अनुभूति करते हैं, तो क्रोध आने का मतलब ही नहीं है। और शंकर जी 12 साल तपस्या करके क्या गुस्से पर विजय नहीं हुए? यह प्रश्न उठता है ना। तो 12 साल तपस्या करने के बाद जब घर लौटे, तो गुस्सा आया उनको और सिर काट दिया, है ना। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये तो क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, कोई 12 साल तपस्या करके आए और गुस्सा करना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जो देह भान, जो हमारे हम देह भान में होते हैं, शिव बाबा आकर के हमारे जो अहम का सिर है, अहंकार का जो सिर है, वो काट देते हैं, है ना। अहंकार होता है तो सर ऐसा होता है ना, तो अहंकार का देह भान का सिर काट देते हैं। और फिर काटने के बाद जब पार्वती जी आए और उनको तो बहुत दुख हुआ, मेरा बेटा ये तो आपने मार दिया इनको, तो फिर शंकर जी को रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने गण जो थे उनके जो साथी थे तो उनको ये ऑर्डर दिया, जंगल में जाइए, कोई भी पहला प्राणी जो मिलता है उसका सिर काट करके आइए। ये भी सोचने की बात है कि अगर तपस्या करके इतनी ताकत है, दूसरे प्राणी का सिर उसमें जोड़ने की ताकत है इनमें, क्यों नहीं वही जो कटा हुआ सिर है उसी को क्यों नहीं जोड़ा? सोचने की बात है, वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? और एक हत्या और दूसरी हत्या होने जा रहा है, एक प्राणी और की हत्या होने जा रहा है ना? तो उन्होंने क्या, कौन सा जानवर देखा? हाथी देखा, तो हाथी के सिर काट करके लेके आए और हाथी के सिर जोड़ा, फिर वो जिंदा हो गए, फिर प्राण उनमें फूंका, फिर वो जिंदा हो गए। तो पहला सिर जो था वो अहंकार का सिर था, देह भान का सिर था, वो बाबा ने आकर के देह भान मिटा करके आत्मिक स्मृति दिया, अपना अस्तित्व भी, अस्तित्व को ही परिवर्तन कर लिया। आप देह नहीं है, आत्मा है। वो मिटा करके फिर जो गजानन, जो हाथी का जो सिर है वो रखा। इसका मतलब बहुत सुंदर है क्योंकि हाथी का एक एक जो अंग है बहुत ही गुण से भरा हुआ है। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, सबसे पहली बात जो परिवर्तन हुआ वो कौन सी चीज परिवर्तन हुई? बुद्धि परिवर्तन हुआ है ना, रियलाइजेशन हुआ हमें कि हम कौन हैं। बुद्धि दिव्य बुद्धि बन गया है ना। तो इसीलिए गणपति का जो सिर है वो बहुत ही बड़ा दिखाते हैं है ना, और वो है बड़ा सिर का मतलब है विशाल बुद्धि है ना, बड़ी बुद्धि। ऐसा नहीं संकुचित बुद्धि नहीं है, संकुचित बुद्धि माना केवल वर्तमान को देखना और जो अपरोक्ष है, जो दिखाई देता है वही देखना, वो जो दिखाई नहीं देता है वो भी देखना विशाल बुद्धि है, है ना? देह भान में होते हैं तो केवल देह को देखते हैं, स्थूल चीजों को देखते हैं। जब हमारी बुद्धि विशाल हो जाता है, दिव्य बुद्धि बन जाता है, तो फिर सूक्ष्म चीजों को भी हम महसूस करना शुरू करते हैं, वाइब्रेशंस महसूस करते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं। एक होता है एजुकेटेड और दूसरा होता है बुद्धिशाली। शिक्षित होना अलग है, बुद्धिशाली होना, समझदार होना अलग है। शिक्षित होना केवल पढ़ाई लिखाई, ठीक है, रट करके सब कुछ जान लिया, वो नहीं। समझदार, बाबा ने हमें समझदार बनाया, बुद्धि को परिवर्तन किया, बुद्धि विशाल हो गया और हर चीज को समझने लगते हैं और जिंदगी को केवल ऊपर से नहीं देखते हैं, जिंदगी के गहराइयों को समझने लगते हैं। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आध्यात्मिक रूप से उसको देखने लगते हैं, ये है विशाल बुद्धि की निशानी। और दूसरी बात है आंखें, बहुत छोटी होती है, है ना। जब दूर देखना होता है तो ऐसे देखते हैं ना, आंखें छोटा करके हम देखते हैं जब दूर देखना होता है, है ना। तो छोटी आंख माना फार साइटेडनेस, दूरांदृष्टि। केवल वर्तमान को ना देखो। बाबा हमेशा कहते हैं कोई भी डिसीशन लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए निर्णय लो। केवल प्रेजेंट, केवल वर्तमान को देखते हुए अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, वो निर्णय करेक्ट नहीं होगा, राइट निर्णय नहीं हो सकता। तो इसीलिए त्रिकालदर्शी की निशानी है छोटी आंख। सोच समझ, क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं तो फिर क्या होगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, बहुत सारे आश्चर्य चिन्ह लग जाते हैं। लेकिन जब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझते हुए कोई भी ड्रामा का सीन देखते हैं, वहां फुल स्टॉप लग जाता है, है ना। तब हम राजी हो सकते हैं ड्रामा के हर सीन से। बाबा कहते हैं राजी जो नहीं होता है ना, वो कौन हो, क्या होगा उसके साथ, वो नाराज हो जाता है, रूठते हैं, रूसते हैं, लोगों के साथ रूठते हैं, बाबा के साथ भी रूठ जाते हैं, बाबा के पास आना छोड़ देते हैं, है ना। रूठना रूसना ये छोड़ने के लिए हमें दूरांदृष्टि रखना बहुत जरूरी है, है ना। और तीसरी बात है मुख, बहुत छोटा सा, गुप्त है, अंदर है उसका, है ना। कम बोलो, ये निशानी है, ये सीख है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो, है ना। और लेकिन कान बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े कान हैं। बोलो कम लेकिन सुनो ज्यादा। लेकिन आजकल के समय के लिए ये भी पर्याप्त नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादा सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? लोगों से। सुनना कम कर दिया है हमने, है ना। लोग अगर कोई परिवार वाले कोई कुछ कहने आते हैं, कान बंद कर देते। आजकल के बच्चों के पास बहुत अच्छे गैजेट्स हैं। कोई मम्मी पापा डांटने लगते हैं या कुछ ऐसे शिक्षा भरी कुछ ऐसे बोल बोलने लगते हैं, ईयर प्लग लगाया, कुछ गाना बजाया और सुना अनसुना कर दिया, है ना। तो बड़े बड़े जो कान है माना, वो भी जैसे छन्नी जैसा है ना। जो सुनना चाहिए वो जरूर सुनना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहिए उसको वहां फिल्टर कर लिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया देना। आजकल टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से बहुत कुछ हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। संगम युग का समय बहुत व्यर्थ जाता है व्यर्थ सुनने और देखने से, है ना। तो इसीलिए जो जरूरी है वो जरूर सुनना है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसको वहां ही फिल्टर करना है। हाथी के लिए कहते हैं इतना बड़ा हाथी लेकिन इतनी छोटी सी छींटी अगर कान में घुस जाए, वो हाथी को मार सकता है, हाथी को परेशान कर सकता है। इसका मतलब क्या है? छोटी सी कोई ऐसे न्यूज सुन लिया, कोई ऐसा गॉसिप सुन लिया तो दिमाग खराब हो जाता है उससे, है ना। और फिर जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। भले महारथी हैं, बहुत पुराने हैं ज्ञान में, फिर भी छोटी सी बात सुन करके, उस पर विश्वास करके वो हाथी, वो वो महारथी मूर्छित हो सकता है, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, हम क्या सुनते हैं और किन चीजों पर हम विश्वास करते हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। और नेक्स्ट बात है कि गणपति का जो सूंड है, सूंड किसका प्रतीक है? वो बैलेंस का प्रतीक है। उस सूंड से बड़े बड़े जो झाड़ है उसको भी उखाड़ सकते, इतनी ताकत है उस सूंड में। लेकिन एक छोटे से बच्चे को बहुत प्यार से उसको झुला भी सकता है, है ना। जहां लॉ भी है लेकिन लव भी है, ये ताकत है अपने अंदर, हर आत्मा के अंदर। क्योंकि हर आत्मा 84 जन्मों में, पूरे कल्प में कभी बहन के शरीर लिया है, कभी भाई का शरीर लिया है। आत्मा के अंदर दोनों संस्कार हैं, मैस्कुलाइन संस्कार भी है तो फेमिनाइन संस्कार भी है, दोनों हैं संस्कार। लेकिन देह भान में आने के कारण से हम सोचते, मैं तो बहन हूं, मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। खुद को बहुत सेंसिटिव समझते हैं, कोमल समझते हैं। नहीं, आत्मा हूं मैं। अगर भाई के शरीर में है तो वो अपने संस्कार, क्योंकि देह भान हमेशा नेगेटिव है। बहन के भान में है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, भाई के भान में है तो ईगो बढ़ जाता है, है ना। तो इसीलिए उन भानों से निकल करके आत्मिक भान में जब स्थित होते हैं तो फिर हम बैलेंस कर सकते हैं। जब चाहे तब लॉफुल हो सकते हैं, जब चाहे तब लॉफुल हो सकते हैं। और ये भी परखने की शक्ति की आवश्यकता है। लॉफुल होने की जगह पर लॉफुल हो गया, लॉफुल होने की जगह पर लॉफुल हो गए, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्रॉपर ठीक तरह हम परख करके फिर समय अनुसार हमें कर्म करने की जरूरत है। कभी अपने को कमजोर नहीं समझना है। दोनों शक्तियां, लव और लॉ की शक्ति, दोनों शक्तियां हमारे अंदर हैं, आत्मा के अंदर हैं, है ना। और गणपति की नेक्स्ट बात है बड़ा पेट। बड़ा पेट, वैसे तो कोई भी देवी देवताओं को इतना बड़ा पेट नहीं दिखाते हैं। सभी देवी देवताएं बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, है ना। लेकिन गणपति के लिए इतना बड़ा पेट दिखा देते हैं, है ना। क्यों? वैसे तो शास्त्रों में ये भी कहानी है कि बड़े पेट को देख करके वो देवी देवता दूसरे देव हंसते थे, कहते थे, है ना। तो वो भी है। बड़ा पेट क्यों है? समाने की शक्ति। किसी को अगर कुछ बात कहते हैं और वो किसी और को हम बोलते हैं, उसको कोई किसी को बताना नहीं ये बात, तो वो अगर किसी को बता दे, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, आपके पेट में कुछ पचता नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है, कुछ बात रहता ही नहीं है, है ना, कहते हैं ना ऐसे। मैंने समाने की शक्ति, समाने की शक्ति क्यों जरूरी है? संबंधों में समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अगर हमारा संबंध सुखद होना है, सुखद चाहिए, तो फिर एडजस्टिंग पावर, समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। समाने की शक्ति माना, समाने की शक्ति का मतलब क्या है कि अवगुणों को, अगर अवगुण भी देखते हैं किसी का भी, कुछ ऐसे बातें हम देखते हैं, अगर उसको परिवर्तन हम कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, तो करके उसको ठीक कर करें। लेकिन अगर कुछ हो नहीं पाता है, तीसरे व्यक्ति के पास, चौथे व्यक्ति के पास जाकर के बोलने से कुछ मतलब नहीं है, इसने ऐसा किया, उसका संस्कार ऐसा है, वो हमेशा ऐसे करती है, वैसे करती है, दूसरों की ग्लानी करने से कुछ हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है? एक व्यक्ति का कंप्लेंट दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के करने से कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। इन बातों को समा करके चलने की जरूरत है। अगर हमें विघ्नेश्वर बनना है तो फिर पेट में बातों को पचा के चलना है, समा के चलने की जरूरत है, तब हमारे संबंध, क्योंकि बहुत सारे जो विघ्न हैं, समस्याएं हैं, वो संबंधों के कारण से होता है, लोगों के कारण से होता है। तो अगर समाने की शक्ति हमने धारण कर ली, बहुत सारे समस्याओं से हम ऊपर उठ सकते हैं। और गणपति को एक दंत दांत दिखाया है, एक दंताया कहते हैं, एक टूटा हुआ है और एक ठीक है ना? उसकी भी कहानी आप सभी ने सुनी होगी, वो एक कैसे टूट गया, है ना? वैसे कहते हैं व्यास जी, जब उनको महाभारत लिखना था तो गणपति जी के पास गए और रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के लिखे, मैं डिक्टेट करता जाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि वो समाधि स्थिति में मैं लिख नहीं सकता हूं, वो आता जाएगा, वो सुन करके आपको लिखते जाना है। क्यों गणपति जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्यों गणपति को चूज किया उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत बुद्धिशाली है, समझदार है, तो इसीलिए उन्होंने गणपति जी को बुलाया। और वो तो नटखट है, बहुत मजाकिया है, बहुत नटखट है गणपति। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं तो लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप कंटिन्यूअसली आपको बोलना होगा, कहीं बीच में रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली आप बोलेंगे तो फिर मैं बैठ करके लिखूंगा। और बहुत फास्ट लिखते थे ना, तो फिर वो सोचने लगे व्यास जी, फिर सोचे, वो भी एक निकाला, फिर उन्होंने भी एक कंडीशन रखा, ठीक है आप ऐसे करते हो तो फिर, लेकिन एक शर्त ये है कि मैं जो भी बोलूंगा आप उसको समझ करके फिर लिखेंगे, समझे बिना आप नहीं लिखेंगे। तो ठीक है, क्योंकि जब समझने लगते हैं थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, फिर लिखना है, समझे बिना आपको लिखना नहीं है। तो बाबा भी क्या कहते हैं यहां, जो भी ज्ञान दिया जाता है, ऐसे पंडित के मिसल आप नहीं बोलो किसी को भी, पहले धारण को समझो, समझ करके धारण करके फिर जब दूसरों को बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। सुन लिया और बोल लिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, पंडित हो जाएंगे। इसलिए जो भी हम सुनेंगे उसको पहले धारण करने की जरूरत है। तो ठीक है, जब लिखना शुरू किया, एक समय ऐसा आया कि गणेश जी का जो पेन है ना वो टूट गया। अभी तुरंत नया पेन तो ला नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया, फिर आपने एक दांत को तोड़ करके फिर वो इंक में डुबो करके फिर वो लिखने लगे। इसका मतलब क्या है? वो तो ठीक है, लेकिन संगम युग के साथ क्या कनेक्शन है उसका? दया, ठीक है, लेकिन बाबा जो हमें जवाबदारी देते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं, सेवा की जवाबदारी, अपने खुद का ना सोच करके, अगर खुद को भी कुछ त्याग करना होगा, खुद के भी कुछ देना होगा, दधीचि ऋषि का भी मिसाल है, गणेश का भी मिसाल है, कि अपने खुद का वो निकाल करके, तोड़ करके फिर करना शुरू किया, क्योंकि उनकी जवाबदारी थी, वो कहीं रुके नहीं, है ना। तो वो अपना ही कुछ त्याग करना पड़ा, कुछ देना पड़ा, वो दिया ना। ऐसे ही ये ना सोचिए जब भी बाबा हमें कोई सेवा की जवाबदारी या कोई भी जवाबदारी देते हैं कि ये कारण है मैं ये नहीं कर सकती, ये बीमार हो तो इसलिए नहीं कर सकती, नहीं, इसका गायन है ना। इन शास्त्रों में लिखा गया है अपना ही गायन है। तो दादियों ने क्या किया, अपना सर्वस्व त्याग करके, सब कुछ समर्पित करके उन्होंने सेवा की ना, खुद का ना सोच करके किया ना। तो ऐसी सेवा जब हम करते हैं तो गणेश का गायन ये है, एक दंताय। और एक दंत इसका भी प्रतीक है कि एक, एक का सुने, एक की ही बात माने, दो दो तीन तीन लोगों का नहीं। एक श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो फिर हम शक्तिशाली बन सकते हैं, तो फिर हम अपने विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। एक मत, दो मत नहीं, तीन मत नहीं, एक मत पर चले, श्रीमत पर चले, तब एक धर्म की स्थापना हो सकता है, एक भगवान की श्रीमत पर चलने से। और गणपति के चार भुजाएं दिखाते हैं, चार भुजाओं में सबसे पहली चीज है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान के आधार से हम चीजों को एनालाइज कर सके, उसको टुकड़े टुकड़े करके, उसको विस्तार रूप से उसको एनालाइज करके उसको हम समझ सकते हैं। कुल्हाड़ी ज्ञान का प्रतीक है, ना केवल ज्ञान लेकिन प्रज्ञा, विजडम का प्रतीक है कुल्हाड़ी, है ना। माया का गला हम काट सकते, कोई भी ऐसे नेगेटिव संकल्प आया, विचार आया, ऐसे कोई परिस्थिति आई, उसको ही माया कहते हैं ना। तो प्रलोभन हुआ या कुछ भी ऐसे भी आया, तो ज्ञान के पॉइंट्स के आधार से, ज्ञान के मनन चिंतन के आधार से उस माया का गला हम काटते हैं, उसको वहां ही शांत कर देते हैं, वहां ही उसको समाप्त कर देते हैं। ज्ञान अगर बुद्धि में है तो माया का गला हम काट सकते हैं। और दूसरे हाथ में है रस्सी, रस्सी मर्यादाओं की रस्सी। जितना हम अपने आप को संयम नियम में बांधेंगे, मर्यादाओं में बांधेंगे, उतना सुरक्षित है, है ना। वैसे तो ये संसार के लोग कहते हैं फ्रीडम, हमको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जो खाना चाहिए, जो बोलना चाहिए, जो करना चाहिए, जिनके साथ जीना चाहिए, वो हमको खुला फ्रीडम चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं, संयम। हर एक कर्म के लिए बाबा ने मर्यादाएं दी हैं, जितना हम उन मर्यादाओं को फॉलो करते हैं तो फिर हम सुरक्षित। जैसे सीता लक्ष्मण रेखा पार किया, खतरा है ना। मर्यादाओं के अंदर अगर हम रहेंगे, बाबा फिर गारंटी देंगे आप सुरक्षित रहेंगे। मर्यादाओं को बार बार हम उल्लंघन कर रहे हैं, फिर हम बाबा के प्रति चिल्ला रहे हैं, बाबा आप क्यों मदद नहीं करते हो, क्यों मेरी इतना लंबा समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, इतना ज्ञान योग करती हूं, फिर भी मुझे क्यों मदद नहीं मिलता है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्या मैं मर्यादाओं पर पूरा चलती हूं। मर्यादाओं पर चलते हैं तो बाबा गारंटी लेते हैं मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, है ना। तो इसलिए मर्यादाओं की रस्सी से अपने आप को बांधने की जरूरत है। और तीसरा जो हाथ है वो ब्लेसिंग की तरह, है ना, देने देना है, देना है, लेना नहीं, कोई कुछ चाहिए नहीं, लेकिन देना है, दुआएं देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना देना है, सब कुछ देना है। लेने की भावना ना रखे, चाहिए चाहिए की भावना ना रखे, जो भी चाहिए बाबा से ले और संसार को दे, लोगों को दे। और चाहिए चाहिए, एक तो जब हमें कुछ चाहिए होते तब ये शब्द यूज करते हैं, मुझे चाहिए, और दूसरे समय जब हम ये शब्द यूज करते हैं वो है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ऐसा बदलना चाहिए, ये भी नहीं। चाहिए शब्द यूज करना ही नहीं है, है ना। जो ड्रामा में हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, बनी बनाई बन रही, कुछ बानी बनी नहीं, है ना। सब कुछ निश्चित है और ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है सही हो रहा है, राइट हो रहा है, है ना। ये भी ना सोचे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये परिवर्तन हो जाना चाहिए, नहीं, वो भी ना यूज करे। सिर्फ शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दे, हर एक को दुआएं दे। और चौथे हाथ में मोदक है, लड्डू मोदक है, स्वीट है। और मोदक को खाते हुए कभी देखा है गणेश जी को? हा? हमेशा हाथ में है लेकिन कभी खाते हुए नहीं देखा है। माना जो भी हम सेवाएं करते हैं वाह वाह तो मिलता है, लोग अप्रिशिएट तो करेंगे, वाह आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ये ज्ञान किसका है? हा? बाबा का ज्ञान है, बहुत अच्छी सेवाएं की, बाबा ने मुझे लायक बनाया। हर बार जब बाबा को बीच में लाएंगे तो हम वो लड्डू तो रखेंगे लेकिन खाना नहीं है। हाँ, उसके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो होगी, सेवाएं करेंगे, सब कुछ करेंगे, और वो मोदक बनाने के लिए बहुत अटेंशन की जरूरत है, बहुत प्यार से, ऐसे वैसे नहीं बना सकते, बहुत प्यार से बनाना पड़ता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अटेंशन की जरूरत है, हर कर्म के प्रति, हर विचार के प्रति, हर संकल्प के प्रति अटेंशन रखते हुए जब हम उसका रिजल्ट अनुभव करते हैं, उसको खाना नहीं है। कब खाना है? कब खाना है? कभी तो खाएंगे, कभी तो खाएंगे, सत्युग में खाएंगे। अभी संगम युग में नहीं खाना है, सत्युग में भरपूर खाना, जो भी कुछ भी सब कुछ मिलेगा, है ना। तो उसका जो प्राप्ति है हम सत्युग में जरूर अनुभव करेंगे। और गणेश जी के जो पोजीशन है बैठने का वो कैसा है? एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे होता है। इसका मतलब न्यारा और प्यारा। इस जिंदगी में, जीवन में रहते हुए नहीं रहना है ना। जब राजा जनक जी ने कहा कि मुझे जीवन मुक्ति के बारे में क्या ज्यादा समझना है, तो बहुत सारे साधु संतों को बुलाया था। अश्वकर जी भी आए उनके दरबार में, तब तो बहुत लेट हो गया था। जब राजा जनक जी निकलना शुरू किया हो गया था तो एक पैर घोड़े पर था, एक पैर नीचे था। तो अश्वकर जी ने कहा, राजन रुको, अभी आप बताओ आप कहाँ हो। तो राजा सोचने लगे, मैं जमीन पे होते हुए जमीन पर नहीं हूं, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हो, बोला उन्होंने। फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि यही जीवन मुक्त स्थिति है, है ना। तो गणेश जी का जो बैठने का पोजीशन है वो भी ये सिखाता है जीवन मुक्त स्थिति। माना रहते हुए नहीं रहना, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, अपने ही मस्ती में मग्न रहना, ये है जीवन मुक्त स्थिति। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्त स्थिति का ये वर्षा देते हैं ना। केवल मुक्ति का वर्षा नहीं देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा देते हैं। तो इसीलिए ये बाबा जब कहते हैं 21 जन्मों का वर्षा मैं देता हूं, 8 जन्म सतयुग का, 20 जन्म 12 जन्म इसका त्रेता युग का, ये 20 जन्म हो गए। तो एक जन्म कौन सा है? संगम युग का है ना। तो जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करने का समय ये ब्राह्मण जीवन का है, संगम युग का समय है जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करने का समय है ना। तो इसलिए यहां अनुभव नहीं करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, फिर सोचेंगे कब खत्म होगा दुनिया, कब हम ऊपर जाएंगे घर, बहुत थक गए बाबा, ये ड्रामा कब खत्म होने वाला है, थक गए, कब सतयुग आने वाला है। क्यों ये शब्द निकलते हैं? क्योंकि यहां ब्राह्मण जीवन में हमने जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं किया है, तब ये शब्द निकलते हैं है ना। तो इसीलिए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इस जीवन में रहते हुए करने की जरूरत है। और गणेश का वाहन चूहा, चूहे पर बैठ सकते हैं कोई? कोई बच्चा नहीं बैठ सकता है चूहे के ऊपर, लेकिन गणपति जी इतने बड़े, बड़ा बिल्ट वाले, तो भी बैठ सकते हैं उनके मोशक के ऊपर या चूहे के ऊपर? नहीं बैठ सकते। फिर भी वाहन क्यों दिखाया है? वो जो चूहा है विकारों का प्रतीक है। चूहा जब देखते हैं ना, अगर छोटा से भी जगह होगा ना, उससे भी घुस जाता है, उससे भी अंदर आ जाता है। अगर थोड़े से भी जगह है हमारी बुद्धि में, थोड़ा सा खाली रखा है, माया रूपी चूहा वहां से घुस के आ जाएगी है ना। तो इसीलिए सब दरवाजे बंद करने की जरूरत है, माया के आने के सब दरवाजे बंद कर, छोटे से भी वो सोचेंगे ना ये कमी है, ठीक है हो जाएगा, अभी थोड़ी अंतिम समय आएगा, अंतिम समय आएगा ना तो ये भी ठीक कर दूंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अलबेलापन में रहेंगे ना तो क्या होगा, चूहा वहीं से आ जाएगी, वहां से आ जाएगी, एक बार घुस गई अंदर तो क्या होगा, कुटर 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 सब कुछ खाती रहेगी। वो तो प्लास्टिक भी खा लेती है, खाने की चीज तो खाएगी ही, लेकिन जो खाने लायक नहीं है वो भी चीज खाने लगती है, माना जो भी है अंदर खोखला कर देती है अंदर माया आकर के है ना। तो इसीलिए उस पर विजय पाना है, उस पर पूरी तरह नियंत्रण, उस पर जब विजय पाएंगे तब हमें बाबा टाइटल देंगे विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक है ना। 5 विकारों पर ना केवल 5 लेकिन 10 विकारों पर हमें विजय पाने की जरूरत है। और फिर गणेश जी के कनेक्टेड जो भी और बातें कौन सी है, गणेश जी के 2 पत्नियां कहते हैं रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि माना लक्ष्मी और सरस्वती, रिद्धि माना धन, धन बहुत ये जो भी स्थूल चीजें हैं, स्थूल संपत्ति है वो सब चीजें प्राप्त होती है, और सिद्धि माना सरस्वती बुद्धि ज्ञान वो भी प्राप्त होता है। दोनों जब है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों जब है तब सिद्धि स्वरूप हो सकते हैं ना, दोनों चाहिए। और ये सोचे कि केवल बुद्धि ठीक है, धन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहेंगे नहीं। और केवल धन हो और बुद्धि ना हो वो भी नहीं, दोनों की आवश्यकता है, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए जब दीपावली में पूजा होती है तो लक्ष्मी के साथ साथ गणेश और सरस्वती का भी पूजन होता है, मतलब तीनों साथ साथ उसका पूजन चलता है। और शुभ और लाभ जो है वो दोनों पुत्र कहते हैं, इसीलिए जब भी कोई भी कार्य शुरू करना होता है स्वस्तिक लगाते हैं, स्वस्तिक का मतलब तो हम सभी जानते ही है, स्वस्तिक काल चक्र का प्रतीक है, पांचों ही युगों का प्रतीक है, पांचों युगों से हम गुजरते हैं, त्रिकालदर्शी बन करके जब हम कार्य करते हैं तो वहां तो हमें सिद्धि मिलना ही है ना। जब इन सभी गुणों को हम धारण करते हैं, ऊपर से नीचे तक अगर देखते इतने सारे गुण धारण होता है ना, विशाल बुद्धि, दूरान दृष्टि, कम बोलो धीरे बोलो, और जो सुनना ज्यादा लेकिन जो सुनना है वही सुने, और एक दंता है, एक श्रीमत पर हम चले, हड्डी हड्डी बाबा के सेवा में हम संलग्न करें, समाने की शक्ति हम धारण करते हुए चले, और मर्यादाओं के रस्सी में अपने आप को बांधे, ज्ञान की कुलाड़ी से माया के गले को हम काटते चले, हमेशा सबको ब्लेसिंग्स देते चले, वरदान देते चले, और फिर जो रिजल्ट मिला अभी ना खा करके बाबा को अर्पित करें, हाँ, और फिर न्यारा और प्यारा बन करके चलते चले, तो फिर पांच विकारों पर, चूहे पर हम विजय पा सकते हैं, हम निर्विघ्न हो सकते हैं, सिद्धि विनायक हो सकते हैं, और रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हमें प्राप्त हो सकता है, और हर कार्य जो हम करेंगे, हर कर्म जो करेंगे वहां लाभ ही लाभ है, शुभ ही शुभ है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये शुभ नहीं है, ये घड़ी शुभ नहीं है। संगम युग का हर जो समय है, हर सेकंड जो है वो शुभ ही शुभ है ना। तो ऐसे अनुभव करते चलेंगे तो जरूर बाबा भी हम सभी से खुश होंगे, और बाबा भी हमें वरदान देते जाएंगे कि हमेशा निर्विघ्न भव, है ना। ये अनुभव हम पूरा शाम हम अनुभव करें, सिद्धि स्वरूप जो हम संकल्प करें वो सिद्ध हो जाए, तभी होगा जब कोई व्यर्थ ना हो ना। जब व्यर्थ संकल्प करते हैं, नेगेटिव संकल्प करते हैं, शक्तियां कम होते जाते हैं, है ना। तो जब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा श्रेष्ठ विचार करते हैं, हमेशा शुभ सोचते हैं, तब हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और न केवल अपने विघ्नों को विनाश करेंगे लेकिन हमारे जो साथी है, न केवल उनके लेकिन संसार के जो भी आत्माएं हैं उनके भी विघ्न हम नष्ट करें। क्योंकि द्वापर युग से जो गायन होता आया है, पूजन होता आया है, एक व्यक्ति का पूजन नहीं है, सभी हम ब्राह्मण बच्चों का गायन है और पूजन है। उस पूज्य स्वरूप में स्थित होकर के जब हम एक घंटा अभी हम योग करेंगे, स्टेज पे तो बहुत सुंदर डेकोरेशन होगा, बहुत बातें माना बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन हम सभी कौन सी स्थिति में स्थित होंगे, कौन सी स्थिति में स्थित होंगे कि विघ्नों को ना केवल हम विनाश अपना विनाश करें लेकिन दुनिया के संसार के जो भी आत्माएं जो पुकार रही है, चिल्ला रही है, बाबा हम बहुत सारे मुरलियों में कहते हैं ना, आपको भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देता है ना। आज हम भक्तों की पुकार सुनने की कोशिश करें, भले ये स्टेज पे हो रहा है लेकिन ऐसे स्वमान में हम बैठ जाएं कि हम पूज्य हैं। द्वापर युग से जो लोगों ने पुकारा है, पूजा है, चिल्लाते आए हैं, तो वही हम देवता देवी देवताएं आज ये स्वमान लेंगे कि हम विघ्नेश्वर सिद्धि विनायक है, विघ्न विनाशक विनायक है ना। तो ये स्वमान लेकर के हम एक घंटा योग में बैठेंगे, लेकिन